बी मानवीय कारक ह्यूमन फैक्टर्स किसी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक प्रमुख हैं। पहला, आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी क्षेत्र में मानव निवास के लिए वहां जीविका के किसी न किसी साधन का पाया जाना अनिवार्य होता है। जीविका के साधनों में आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, विविध सेवाएं आदि प्रमुख हैं। विश्व के जिस भाग में कोई एक अथवा एक से अधिक आय के स्रोत उपलब्ध तथा विकसित होते हैं, वहां निवास के लिए जनसंख्या आकर्षित होती है। कृषि प्रधान देशों के उन भागों में जहां उपजाऊ मिट्टी सहित अन्य भौगोलिक परिस्थितियां कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, वहां मानव बसाव अधिक पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान, चीन के मैदान और बांग्लादेश के डेल्टाई भाग में जनसंख्या अधिक होने का यही कारण है। प्रौद्योगिकीय विकास जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आधुनिक काल में प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा नए नए यंत्रों, मशीनों, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा जीवन स्तर में उत्थान होता है, जिसके फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों से औद्योगिक तथा आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। उद्योग मुख्यतः नगरी केंद्रों पर स्थापित होते हैं, अतः रोजगार के लिए ग्रामीण जनसंख्या का पलायन नगरों की ओर होता है। किसी प्रदेश में आर्थिक प्रगति होने पर उसमें भोजन तथा रोजगार की उपलब्धि के रूप में अधिक जनसंख्या के पोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वहां जनसंख्या का बसाव बढ़ने लगता है। आर्थिक रूप से विकसित देशों या प्रदेशों में जो आवश्यक वस्तुएं स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं, वे अन्य क्षेत्रों से आयात कर ली जाती हैं। आर्थिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। वहां अधिकांश भोज्य पदार्थ बाहर से आयात किए जाते हैं और उनके बदले निर्मित सामग्रियों का निर्यात किया जाता है। एशिया में जापान भी इसी श्रेणी का देश है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है और इस आर्थिक समृद्धि के कारण यहाँ जनसंख्या की सघनता भी अधिक है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के लिए प्रवास किया, जिससे विश्व के जनसंख्या वितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। उन नवीन क्षेत्रों में पहुंचकर यूरोपीय लोगों ने अपनी विकसित प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान के प्रयोग द्वारा वहां के संसाधनों का विध्वन प्रारंभ किया और कुछ ही दशकों में वहां का आर्थिक विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया। तीव्र आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग ने जनसंख्या को अधिक आकर्षित किया, जिससे वहां जनसंख्या अधिक सघन होती गई। इसके विपरीत आर्थिक रूप से विपन्न अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका के अनेक भाग मनुष्यों द्वारा उपेक्षित रहे हैं। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप पर सामाजिक संगठन, वर्ग, भेद, रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक विश्वास तथा जीवन मूल्यों के प्रभाव को अपेक्षाकृत लघु स्तर पर देखा जा सकता है। जिन रूढ़िवादी समाजों में सामाजिक मान्यताएं तथा धार्मिक विश्वास आदि परिवार नियोजन में बाधिक होते हैं, वहां जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र होती है, जिससे वहां जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ता जाता है। विभिन्न मुस्लिम देशों तथा विकासशील देशों में सामाजिक प्रावरोधों की जटिलता के कारण जनसंख्या की सघनता में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सामाजिक प्रथाएं तथा जीवन मूल्य जनसंख्या के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप में देखने को मिलता है। भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति आर्थिक संपन्नता के लिए जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जनसंख्या वाले यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर मानव स्थानांतरण अल्प जनसंख्या वाले अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए हुआ। इसके विपरीत पूर्वी या प्राच्य सभ्यता वाले एशियाई देशों के लोगों में क्षेत्रीय गतिशीलता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आर्थिक दौड़ काफी मंद होती है और लोग अपनी आय तथा साधन के अनुसार जीवन यापन करके निम्न जीवन स्तर से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चीन, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों से स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण अपेक्षाकृत कम हुए हैं। पिछले कुछ दशकों से अनेक विकासशील देशों में नगरीकरण की प्रवृत्ति में तीव्रता आई है और निर्धनता तथा व्यापक बेरोजगारी वाले ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का पलायन नगरी केंद्रों की ओर हो रहा है, जिससे नगरी जनसंख्या के आकार और उसके अनुपात में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सरकारी नीतियां जनसंख्या के वितरण और घनत्व को विभिन्न रूपों में नियंत्रित करती हैं। विभिन्न देश अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं, जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि तथा प्रवास को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जनसंख्या प्रवास पर राष्ट्रीय नियंत्रण कम होता था, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण संभव था। उस समय जहां नए आर्थिक संसाधनों का पता चलता था, वहां उच्च प्रौद्योगिकी वाले घने बसे हुए देशों से लोग आकर बसने लगते थे और उपनिवेशों की स्थापना करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग सभी राष्ट्रीय सरकारों ने आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के परिणाम स्वरूप वहां गोरी जातियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है। इसी प्रतिबंध के कारण सघन बसे हुए एशियाई तथा अफ्रीकी देशों से आप्रवासन पूर्णतः प्रतिबंधित है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 50वें भाग से भी कम है। इस प्रकार देश विभाजन, युद्ध आदि के परिणाम स्वरूप भी जनसंख्या का स्थानांतरण होने से जनसंख्या वितरण प्रतिरूप प्रभावित होता है। सन 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान विभाजन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे दोनों देशों के जनसंख्या वितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। चौथा, जनसांख्यिकीय कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास और नगरीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनसांख्यिकीय तत्व हैं। लगभग पिछले 50 वर्षों से प्रायः सभी देशों में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय आवास प्रवास पर प्रतिबंध है। अतः भारत और चीन जैसे देशों में जहां पहले से ही जनसंख्या का आकार विशाल है, वहां प्रवास के अभाव में प्राकृतिक वृद्धि से ही जनसंख्या के आकार और सघनता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बहुत से विकासशील देशों में प्रयत्न के बावजूद जन्म दर में अधिक कमी नहीं आ पाई है, जबकि चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में काफी कमी आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप वहां प्राकृतिक वृद्धि की गति निरंतर तीव्र बनी हुई है और जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती जा रही है। इसी कारण से भारत सहित अनेक विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकसित देशों की स्थिति इससे भिन्न है। अधिकांश विकसित देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित हैं और निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, तथा दोनों में अंतर बहुत कम रह गया है। इससे उन देशों में जनसंख्या की वृद्धि लगभग रुक सी गई है और जनसंख्या के घनत्व में लगभग स्थिरता आ गई है। इस प्रकार नगरीकरण के विकास का भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पाया जाता है। नगरों के विकास से ग्रामीण जनसंख्या रोजगार आदि विभिन्न सुविधाओं की खोज में नगरों की लिए स्थानांतरित होती है, जिससे नगरी केंद्रों में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। वर्तमान काल में जनसंख्या का क्षेत्रीय पुनर्योजन की प्रक्रिया विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है, जिसका मूल कारण नगरीकरण का विकास ही है। जनसंख्या का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आज संसार की कुल जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक है, जिसका आधा से अधिक भाग लगभग 60% अकेले एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार सन 2001 में संसार की कुल जनसंख्या 614.81 करोड़ थी। एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशेनिया का स्थान आता है। रूस की जनसंख्या 14.5 करोड़ है। विभिन्न देशों के पृथक पृथक आंकड़ों तथा जनसंख्या मानचित्र से स्पष्ट होता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। संसार के थोड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग संकेंद्रित है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है और अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के अधिकांश भाग हिमाच्छादित होने के कारण जनरिक्त हैं। इस प्रकार विश्व का लगभग 60% जनसंख्या कुल स्थलीय क्षेत्रों के लगभग 5% भाग में ही केंद्रित है। यहां भी इसकी विपरीत लगभग आधे स्थलीय क्षेत्र पर मात्र 5% जनसंख्या का ही निवास है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व के 40% से अधिक स्थलीय भाग मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होने के कारण निर्जन है। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 370.83 करोड़ तथा विश्व का प्रतिशत 60.3%, अफ्रीका 73.88 करोड़ विश्व का प्रतिशत 12%, यूरोप रूस सहित 67.63 करोड़ 11% विश्व का, उत्तरी अमेरिका 49.18 करोड़ विश्व का प्रतिशत 8%, दक्षिणी अमेरिका 35.73 करोड़ विश्व का प्रतिशत 5.8, रूस 14.49 करोड़ विश्व का प्रतिशत 2.4, ओशेनिया 3.09 करोड़ विश्व का प्रतिशत 0.5। जनसंख्या वितरण के विश्व मानचित्र के अनुसार संपूर्ण विश्व को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अल्प तथा अति अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र और निर्जन प्राय एवं बिना बसे हुए क्षेत्र। ए, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जिसका अधिकांश निम्नांकित 3 विशाल जनसमूहों ह्यूमन एग्लोमरेशन में केंद्रित है। पहला, पूर्वी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। और तीसरा, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। उपर्युक्त तीनों महाजनसमूहों को क्रमशः एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह के नाम से जाना जाता है। इनका वितरण विश्व में इस प्रकार है। पहला, पूर्वी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया। यह संसार का सबसे विशाल मानव समूह है, जिसका विस्तार चीन से लेकर इंडोनेशिया होते हुए पाकिस्तान तक है। इस भूभाग पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे एशियाई जनसमूह भी कहते हैं। एशियाई जनसमूह क्षेत्रीय रूप से 3 उपखंडों में विभक्त है। ए, पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देश सम्मिलित हैं। बी, दक्षिणी एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया आदि देश सम्मिलित हैं। पूर्वी एशिया विश्व का सबसे विशाल जनसमूह है, जिसके अंतर्गत संसार की 1/4 से अधिक, लगभग 25% जनसंख्या का निवास है। चीन विश्व का बृहत्तम जनसंख्या वाला देश है। ताइवान सहित चीन में विश्व की लगभग 21%, 128.5 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। इसके समीप स्थित द्वीपीय देश जापान की जनसंख्या लगभग 12.73 करोड़ है। चीन के दक्षिण में स्थित उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया में सम्मिलित रूप से लगभग 4.7 करोड़ जनसंख्या का निवास है। इस प्रकार पूर्वी एशिया में कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ जनसंख्या का निवास है। एशियाई जनसमूह के देशों में जनसंख्या 2001 के अनुसार चीन 128.52 करोड़, विश्व का प्रतिशत 20.9, भारत 103.34 करोड़, विश्व का प्रतिशत 16.81, इंडोनेशिया 21.44 करोड़, विश्व का प्रतिशत 3.49, पाकिस्तान 14.63 करोड़, विश्व का प्रतिशत 2.38 करोड़, बांग्लादेश 14.09 करोड़, विश्व का प्रतिशत 2.29, जापान 12.73 करोड़, विश्व का प्रतिशत 2.07, वियतनाम 7.92 करोड़, विश्व का प्रतिशत 1.29, फिलीपींस 7.72 करोड़, विश्व का प्रतिशत 1.26, थाईलैंड 6.16 करोड़, विश्व का प्रतिशत 1, म्यांमार 4.82 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.78 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.78 प्रतिशत, कोरिया 4.71 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.77, मलेशिया 2.35 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.38, श्रीलंका 1.88 करोड़, विश्व का प्रतिशत 0.31, दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मानव जनसमूह पाया जाता है। इसके प्रधान घटक देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जो सन 1947 के पूर्व एक ही देश के अंग थे। भारत चीन के पश्चात विश्व का दूसरा बृहत्तम जनसंख्या वाला देश है। भारत में 103.3 करोड़, पाकिस्तान में 14.6 करोड़ और बांग्लादेश में 14.1 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार इन तीनों देशों की कुल जनसंख्या 132 करोड़ से अधिक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या के 20% से ऊपर है। दक्षिण पूर्व एशिया का जनसमूह अपेक्षाकृत छोटा है और कम संगठित है। हिंद एशिया के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर लगभग 21.4 करोड़ लोग और वियतनाम में लगभग 7.9 करोड़ लोग रहते हैं। पहाड़ी एवं पठारी भूमि और द्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण प्रायः असंगठित है। इस जनसमूह में भी विश्व की 5% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशियाई जनसमूह मुख्य रूप से 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पाया जाता है, जहाँ उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि भूभागों पर मानसून हवाओं से पर्याप्त वर्षा होती है। ऊंचे पर्वतों से निकलने वाली नदियों में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह बना रहता है, जिसका उपयोग नहरों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। मानसूनी जलवायु होने के कारण इन देशों में कम से कम दो फसलों को उत्पन्न करने की सुविधा है। मानसून एशिया में नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ से निर्मित विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, जिसकी मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ तथा उपयोगी है। भारत में दक्षिण पठार की लावा के जमाव से निर्मित काली मिट्टी भी अधिक उपजाऊ है। विस्तृत उपजाऊ भूमि और पर्याप्त वर्षा की उपलब्धि के कारण ही एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान हैं और अधिकांश जनसंख्या की जीविका कृषि पर आधारित है। कुछ भागों में जहां वर्षा पर्याप्त नहीं है अथवा अनियमित है, वहां सिंचाई करके सिंचित कृषि की जाती है, किंतु पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः आर्द्र कृषि ही प्रमुख है। कृषि की प्रमुखता एशियाई जनसमूह की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की सबसे प्रमुख फसल चावल है, जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सामान्यतः अन्य फसलों से अधिक है। चावल में अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषण क्षमता भी अधिक पाई जाती है। चावल की कृषि की प्रधानता के कारण इस जनसमूह की मानव सभ्यता को चावल की सभ्यता राइस कल्चर भी कहते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और जापान विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। एशिया में जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता नदी घाटियों में पाई जाती है, जहां उपजाऊ काप मिट्टी, पर्याप्त वर्षा तथा सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। मानसून एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चावल के अतिरिक्त गेहूं, जौ, मोटे अनाज, दालों आदि का उत्पादन भी बहुतायत से किया जाता है। पेय फसलों के रूप में गन्ना इस प्रदेश की विशिष्ट फसल है, जिससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। दक्षिण और पूर्वी एशिया के उपजाऊ मैदानी भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत पहले से होता आया है, जिसका मूल आधार कृषि फसलें ही हैं। संपूर्ण प्रदेश में निर्वाह मूलक कृषि की परंपरा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक तथा कृषि भूमि अपेक्षाकृत सीमित है। इसके साथ ही जोतों खेतों के आकार छोटे हैं और खेती के विभिन्न कार्यों में परंपरागत प्राचीन उपकरणों का ही प्रयोग अधिक होता है। नवीन तकनीकों के अभाव, उर्वरक तथा उन्नत बीजों के कम प्रयोग और निर्धनता आदि के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन उन्नतशील देशों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। यहाँ के कृषक अधिकांशतः निर्धन हैं और कृषकों की एक बड़ी संख्या भूमिहीन कृषकों के रूप में पाई जाती है, जो दूसरे भूस्वामियों की खेतों पर मजदूरी करके जीविका प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर इस प्रदेश के अंतर्गत सभी विकासशील देश आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इन देशों में कृषि के साथ पशुपालन भी होता है, जिसकी प्रकृति निर्वाह मूलक है। केवल जापान विकसित देशों की श्रेणी में आता है और यह एक औद्योगिक देश है। एशियाई जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, घास, पत्ती आदि से निर्मित घरों में रहती है। यहाँ निर्धनता के साथ ही अशिक्षा और बेरोजगारी भी अधिक व्यापक है। सभी देश विदेशी उपनिवेश रह चुके हैं और अधिकांश देश सन 1950 तक स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन देशों में उद्योगों का विकास हो रहा है तथा नगरों की संख्या और आकार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। चीन और भारत में अनेक बृहत उद्योगों का विकास भी हुआ है, किंतु अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि की प्रधानता है। भारत में आज एक चौथाई से अधिक जनसंख्या नगरों में रहने लगी है। एशियाई जनसमूह में केवल जापान ही एक ऐसा देश है जहां औद्योगिकरण अधिक हुआ है। अधिकांश जनसंख्या नगरी है और जीवन स्तर पाश्चात्य विकसित देशों के तुल्य है। जापान के अतिरिक्त एशियाई जनसमूह के अन्य सभी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं और जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की विस्फोट अवस्था से गुजर रहे हैं। इन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक दवाओं के प्रयोग से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, किंतु जन्म दर में अधिक ह्रास नहीं हो पाया है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चीन, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में जनसंख्या पहले से भी अधिक है और उस पर वृद्धि दर भी 2% वार्षिक से ऊपर है, जिससे जनसंख्या आकार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से भोजन, आवास, रोजगार, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सामान्य जीवन कठिन होता जा रहा है। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती यूरोप। एशिया के पश्चात दूसरा विशाल जनसमूह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग में स्थित देशों में कुल मिलाकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत जर्मनी 8.2 करोड़, ग्रेट ब्रिटेन 5.9 करोड़, फ्रांस 5.9 करोड़, इटली 5.7 करोड़, स्पेन 4.1 करोड़, पोलैंड 3.9 करोड़, यूगोस्लाविया 2.3 करोड़, रोमानिया 2.2 करोड़, नीदरलैंड 1.6 करोड़, पुर्तगाल 1 करोड़, हंगरी और बेल्जियम 1 करोड़ आदि देश सम्मिलित हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तरी से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित कोयला पेटी में पाई जाती है, जहां आधुनिक उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था और अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों तथा मैदानी क्षेत्रों में निवास करती थी। यहाँ जलोढ़ और लोयस मिट्टियाँ मिलती हैं, जो उपजाऊ हैं और कृषि के लिए उपयुक्त हैं। गेहूँ, जौ, राई, मक्का, चुकंदर, आलू आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। समशीतोष्ण जलवायु तथा उसके अनुकूल पर्याप्त वर्षा कृषि कार्यों के साथ ही जनस्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। अतः 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोपीय लोग मुख्यतः कृषि से ही जीविका प्राप्त करते थे, किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात 20वीं शताब्दी के आरंभ तक उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश विश्व के उद्योग प्रधान देश बने गए। उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में औद्योगिक सभ्यता का पूर्ण विकास हुआ है और वहां जनसंख्या के संकेंद्रण का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग का विकास है। पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली हुई कोयला पेटी में विविध प्रकार के उद्योग धंधों का खूब विकास हुआ है, जिनमें लोहा, इस्पात, मशीनरी, वस्त्र, दवाएं एवं रासायनिक वस्तुएं, प्लास्टिक पदार्थ, विद्युत उपकरण एवं सामग्री बनाने के कारखाने प्रमुख हैं। कोयला पेटी के भीतर तथा समीपवर्ती भागों में खनिज, लौह, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों के पर्याप्त भंडार हैं, जो औद्योगिकरण में सहायक है। इस पेटी में जनसंख्या की सघनता सबसे अधिक है, अतः इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी, एक्सिस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। यूरोपीय औद्योगिक पेटी का विस्तार पश्चिम में अधिक और पूर्व की ओर यह संकीर्ण हो गई है। यूरोपीय जनसमूह में जनसंख्या की जीविका के मुख्य स्रोत द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं हैं, जो मुख्यतः नगरों में संपन्न होती हैं। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या विनिर्माण उद्योगों, व्यापार, यातायात तथा अन्य नगरीय कार्यों में संलग्न है। विनिर्माण उद्योगों तथा व्यापारिक क्रियाओं के विकास से यूरोपीय देशों में जनसंख्या की पोषण की क्षमता अधिक है। आवश्यक खाद्य पदार्थ और उद्योगों के लिए कच्चे माल अन्य महाद्वीपों से मंगाए जाते हैं तथा उनके बदले में मशीनरी तथा अन्य निर्मित सामान निर्यात किए जाते हैं। यूरोप के इस भाग में परिवहन के विभिन्न साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। स्थलीय भाग पर सड़कों और रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। नदियों और नहरों का प्रयोग आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है, जिससे आंतरिक महत्वपूर्ण नगर भी समुद्र पत्तनों से जुड़े हुए हैं। समुद्र की निकटता तथा उनके तटों पर समुद्र पत्तनों के विकास से यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उन्नत दशा में है। विश्व का सर्वाधिक विदेशी व्यापार यूरोप के इसी भाग से होता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति अधिक तीव्र गति से हुई है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए आधुनिक मशीनों और कुशल कारीगरों की कमी नहीं होने पाई है। औद्योगिक और नगरीय सभ्यता यूरोपीय जनसमूह का विशिष्ट लक्षण है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी देश उद्योग प्रधान हैं और अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। पश्चिमी यूरोप के देश लगभग 2000 वर्ष पहले जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था, उच्च जन्मदर और उच्च मृत्युदर से बाहर निकल चुके थे और आज ये जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अपने निम्नतम स्तर पर होती है और जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक जाती है तथा इन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, किंतु विकासशील देशों की भांति यहाँ अति जनसंख्या की समस्या नहीं है। रोजगार के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धि, प्रति व्यक्ति औसत उच्च आय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास और उच्च नगरीकरण आदि के फलस्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप में सामान्य जीवन स्तर उच्च और आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण है। तीसरा, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो एशियाई और यूरोपीय जनसमूहों की तुलना में काफी छोटा है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसे अमेरिकी जनसमूह के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी जनसमूह विश्व का सबसे नवीन और विकसित मानव समूह है, जिसका उद्भव और विकास मुख्यतः यूरोपीय प्रवास के परिणाम स्वरूप हुआ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय मूल की है, जिसके कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति की प्रमुखता पाई जाती है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या में लगभग 90% यूरोप से आए हुए लोगों की है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि यूरोपीय देशों से भारी संख्या में जनसंख्या स्थानांतरण उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ, जिनमें से अधिकांश महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तटवर्ती भागों में बस गए, क्योंकि ये क्षेत्र सर्वाधिक अभिगम्य थे और इसके साथ ही यहाँ खनिज संपदा के विशाल भंडार और शक्ति के साधन उपलब्ध थे, जिसके आधार पर आधुनिक औद्योगिक विकास संभव था। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान और पूंजी का स्थानांतरण भी उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ, जिसके प्रयोग से वहां उपलब्ध खनिज संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन आरंभ हुआ और नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते गए। इस क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, जहां विविध प्रकार के उद्योग धंधे संचालित होते हैं। इस औद्योगिक पेटी में लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी एवं इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर कार उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि अधिक विकसित अवस्था में हैं। यहाँ के निर्मित सामान विश्व के अन्य देशों में प्रयुक्त होते हैं। अटलांटिक महासागर के तट पर समुद्र पत्तनों का उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। औद्योगिक पेटी के पश्चिम में उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार है, जहाँ बड़े पैमाने पर उन्नतशील ढंग से खेती की जाती है। यहाँ इतना अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है कि वह देश की आवश्यकता से बहुत अधिक है और विदेशों को निर्यात किया जाता है। खेती बड़े बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से की जाती है, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है। इस प्रकार अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या उद्योग, खनन, परिवहन तथा अन्य द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में लगी हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति उच्च आय प्राप्त होती है। उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्यिक क्रियाओं की बहुलता, उच्च नगरीकरण, यंत्रीकृत कृषि आदि अमेरिकी जनसमूह की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की लगभग 95% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अमेरिकी लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है। अमेरिकी जनसमूह की विशेषताएं लगभग यूरोपीय जनसमूहों के तुल्य हैं, किंतु यह यूरोप की तुलना में अधिक विकसित तथा संपन्न है। अमेरिका में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित हैं और अत्यंत निम्न स्तर पर पाई जाती है। विदेशों में आप्रवासन पर प्रतिबंध भी प्रतिबंधित है। अतः जनसंख्या वृद्धि दर मंद 1% वार्षिक है तथा जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है।